Om Shanti. Good morning. Om Shanti. आज इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो परमात्मा को नहीं मानते हैं। एक बार की बात है, एक डिबेट रखी गई जिसका टॉपिक था परमात्मा है या नहीं है, ये प्रूफ करना था। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट किया और किसी ने प्रूफ किया कि यस ही इज देयर, किसी ने प्रूफ किया ही डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट में जब डिबेट पूरी हुई, रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, तो एक साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया था कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। उसका नाम लिया गया कि आप आइए मंच पर, अपना प्राइज प्राप्त कीजिए, यू आर द विनर। तो अपने स्थान से उठकर जब वह मंच पर जा रहा था और उसे जब प्राइज मिला, तो उसके बाद बोलता है, थैंक्स गॉड, आई कुड हैव प्रूव्ड यू डज नॉट एग्जिस्ट, यू डू नॉट एग्जिस्ट। बहुत तालियां बजी। लेकिन आप देखिए इसमें कि प्रूफ किया कि परमात्मा नहीं है, लेकिन धन्यवाद किसका किया? इट मीन्स ही एग्जिस्ट। तो आज आप यही जानेंगे दीपा दीदी के द्वारा कि वो है या नहीं है, है तो कैसा है, कहाँ रहता है, आप उनसे कैसे मिल सकते हैं, जिसके लिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ये अर्जुन, तो मुझे यज्ञ तप व्रत नियम वेद शास्त्र के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। मैं जब स्वयं आता हूं इस धरती पर, स्वयं ही अपना परिचय देता हूं, तभी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो वो कौन है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। दीपा दीदी का थोड़ा सा परिचय दे देती हूं। आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, आप बचपन से ही ज्ञान में हैं, आपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बहुत सारे बटालियन, सेक्टर्स, हेडक्वार्टर्स में भी जाकर के संदेश दिया है और स्ट्रेस मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग वगैरह कराए हैं। और साथ ही साथ आपका जो सिक्योरिटी सर्विस विंग है, इसमें आप कई वर्षों से लगातार आ रहे हैं और आपके लेक्चर्स ले रहे हैं। आप एक बार दीदी का कर्तव्य ध्वनि के द्वारा जोरदार स्वागत करेंगे। ओवर टू दीपा दीदी। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत 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 धन्यवाद दीदी। आप दो दिनों से बहुत सुंदर योग का अनुभव भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर लेक्चर्स भी सुन रहे हैं, और इन बातों को सुनते हुए मन में बहुत सारी प्रेरणाएं भी आते होंगी, प्रेरणाएं आ रही कि ये चीजें हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, अपना सकते हैं, अपने जीवन में इन बातों को लाने से हमें ये फायदा हो सकता है, हम ये परिवर्तन से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे श्रेष्ठ संकल्प आते होंगे, आपको आ रहे हैं, तो वो सारे संकल्प को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीजें समझते जाएंगे, और इसके पहले भी हम समझते आए हैं, लेकिन उन चीजों को अपने जीवन में लाने के लिए जो हम जानते हैं और जो हम कर रहे हैं, वो दोनों चीजों में थोड़ा सा अंतर रह जाता है। ऐसा है, जानने में तो बहुत सारी बातें हम समझ रहे हैं, करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में कई बार उन चीजों को समझते हुए, अनुभव करते हुए, प्रयास करते हुए भी हम उसको अपने जीवन में संपूर्ण रूप से ला नहीं पाते हैं। तो वो जो गैप है, अंतर है, उसके लिए हमें जरूर शक्ति चाहिए। और हम देखते हैं कि आत्मा के लिए शक्ति का दाता कौन है, परमात्मा पिता है। तो भल दीदी ने बताया कहानी में कि उनको प्रूव करना था कि साइंटिस्ट को कि नहीं, ईश्वर नहीं एग्जिस्ट करता है। लेकिन मुझे लगता है आज हर एक व्यक्ति ईश्वर से कोई ना कोई रूप से इतना समीप संबंध से जुड़ा है, चाहे उसको याद कर रहा है, चाहे उसे फरियाद कर रहा है, लेकिन जुड़ा हुआ जरूर है ना। और जैसे परिस्थितियां हम देखते हैं समाज में, देश में, सारे ग्लोब में परिस्थितियां और डिफिकल्ट होती जा रही है, नकारात्मक होती जा रही है, और अंतर से ईश्वर के प्रति भावनाएं जुड़ती जा रही है, लेकिन वो संबंध ऐसा समीप हो जाए जो हम उसके सदा साथ का अनुभव कर सकें, हर पल मन बुद्धि को उनके साथ कनेक्ट कर सकें, ताकि परमात्मा की जो असीम शांति है, शक्ति है, उसको हम अनुभव कर सकें। ऐसा लक्ष्य जरूर आपके अंदर भी आता होगा, आता है, क्योंकि यहाँ दो दिनों से भी आपको यहाँ के वायुमंडल में वो प्रभाव शांति का, दिव्यता का, शक्ति का फील हो रहा है। मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तब भी एक बहुत सुंदर वायुमंडल बन जाता है, हमारा मन ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, ऐसा अनुभव करते हैं, बातचीत कर रहा है। तो वो अनुभव हर पल हमारे दैनिक जीवन में भी हो, इस लक्ष्य से परमात्मा स्वयं ही आकर अपना संपूर्ण सत्य परिचय देते हैं, ताकि हम उनके साथ उस समीप संबंध में जुड़ सकें, जैसे आज हम अपने दैहिक संबंध है, हमारे परिवार के संबंध है, कारोबार में संबंध है, जिनके साथ आप रोज कारोबार कर रहे हैं, आपकी जहाँ पोस्टिंग है, जिनके साथ आप कलीग्स के साथ कार्य कर रहे हैं, तो उनको याद करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ बातचीत करना सहज है क्योंकि काम उनके साथ ही है, अपने परिवार, जीवन साथी, माता पिता, बच्चे, उनके साथ संबंध हमारा समीप है, उनको याद करना भी सहज है। यहाँ बैठे बैठे भी जैसे ही हमने ये संबंध को याद किया, तुरंत मन जुड़ जाता है, जुड़ जाता है ना, बच्चे याद आ जाते हैं, जीवन साथी याद आ जाता है, मित्र याद आ जाते हैं। तो जैसे ये संबंध में समीपता है, ऐसे ही परमात्मा के साथ हमारी समीपता हो, जो हर सेकंड हम हर क्षण हर संकल्प में उनको याद भी कर सके, और उनके द्वारा जो हमें शक्तियां अपने अंदर भरनी है वो अनुभव करते जा सके। तो उसके लिए परमात्मा आकर स्वयं हमें अपना सत्य परिचय बताते हैं। हम उनको याद तो जरूर करते हैं ईश्वर को, लेकिन ये याद जो है इसमें याद सहज हो जाए, याद अलग अलग विधि से तो हम धर्म में करते आए हैं। वो याद में हम देखते हैं भावनाएं भी जुड़ी हुई है, तो वो याद हम अलग अलग अपने धर्म गुरु, जो भी हमें दिशा देने वाले हमारे धर्म पिताएं हैं, उन्होंने हमें जो समझ दी, जो उन्होंने हमें गाइडेंस दिया, उसके आधार से हम याद करते आए अपने अपने धर्म, अपने अपने आध्यात्मिक विचारधारा से, और हमें उन दिशाओं से, उन पथों से प्राप्ति भी होती है, भक्ति भी हम करते हैं ना। हर एक अपने अपने रूप से बहुत ईश्वर को प्यार से याद करता है, भक्ति के द्वारा भी, तो उन सब से प्राप्ति का अनुभव जरूर है। लेकिन हम देखते हैं कि ये प्राप्ति, ऐसी अनुभूति जो है वो सहज हो जाए, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि विशेष करके जब हमारा मन थोड़ा विचलित है, हम कोई परिस्थिति के वजह से अंदर में चिंतित हैं, उस समय हम देखते हैं कि ईश्वर को याद करना चाहते हैं, मन को ईश्वर की शक्ति से, शांति से भरना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं क्या करें, मन हमारा एकाग्र चित्त नहीं होता है, हम चाह रहे हैं लेकिन मन लगता नहीं है, हाथ से माला से मन का तो हम फिरा रहे हैं, मन का मणका वो कहीं और फिर रहा है। ऐसी मीठी हम कहेंगे कंप्लेन हम ईश्वर को करते हैं कि हम चाहते हैं लेकिन आपकी याद में एकाग्रता नहीं अनुभव कर पा रहे हैं। तो वो एकाग्रता का अनुभव ऐसे समय में जहां हमें इस याद से, इस अनुभूति से शक्ति की आवश्यकता हो, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। फरियाद और याद में थोड़ा अंतर है। जहां हम ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, हम ईश्वर को अपने दुख दर्द की वर्णन करते रहते हैं, लेकिन उस समय हम वो शक्ति भी उनसे ले सकें। तो इसलिए यहाँ परमात्मा हमें जो राजयोग सिखा रहे हैं वो टू वे कम्युनिकेशन है। हम परमात्मा से बातचीत भी करेंगे और उनसे भी शक्ति अपने अंदर भरेंगे। उससे क्या होगा, शक्ति अपने अंदर भरने से क्या होगा, जो हमारी मनोस्थिति हलचल में है, थोड़ा दुख दर्द की अनुभूति में है, तनाव में है, उसको हम परिवर्तन कर सकेंगे। तो वो उनकी बातचीत हम सुन सकें, समझ सकें, हम उनसे वो शक्ति ले सकें, उसके लिए उनके साथ हमारा बहुत समीप संबंध चाहिए। तो हम देखते हैं कि ईश्वर को हम याद करते आए हैं, तो ऐसे हम देखें तो धर्म पिताओं के द्वारा हमें दिशा मिली है, और हमारे अंदर हर एक धर्म पिता के प्रति वो भावनाएं हैं, आदर सम्मान है, हम उनको ईश्वर का स्वरूप मानते आए हैं। इसलिए धर्म पिताएं अनेक हैं और हर एक की अपनी अपनी आस्थाएं हैं उन धर्म पिताओं में। फिर हम देखते हैं कि देव आत्माएं भी अनेक हैं, अनेक है ना, हर एक के कुल देवी देवताएं अनेक हैं। कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं, तो अनेक हो गए। और हर एक की अपने देवता के प्रति भावनाएं हैं, उनकी उनका उनके प्रति मन में सम्मान है, संबंध है, तो उस रूप से देवी देवताएं भी अनेक हैं, श्रेष्ठ आत्माएं भी अनेक हैं जो हमको प्रेरणा देती हैं। हमारे जीवन में कई ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, चाहे दैनिक जीवन में, चाहे हमने उनके बारे में सुना है इतिहास में, चाहे धर्म के मार्ग में, तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं भी अनेक हैं, उनको भी हम याद करते हैं। महान आत्माएं भी अनेक हैं, महान आत्माएं भी अनेक हैं ना, लेकिन ये सब आत्माओं को याद करते हुए हम उस परमात्मा को भी याद करते हैं। अब परमात्मा एक है या अनेक है, एक है, तो अंतर हो गया, क्योंकि परम शब्द का अर्थ क्या है, जैसे हम परमवीर चक्र देते हैं नहीं, सम्मान के लिए, तो परम अर्थात सुप्रीम, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन होगा, एक। और इसलिए हम कहते हैं कि परमात्मा एक है। हर एक धर्म पिता ने भी इस बात को हमारे सामने रखा है, परमात्मा को सत्य भी कहा, तो सत्य एक है। इसलिए हम देखते हैं कि परमात्मा स्वयं आकर अपना ही वो सत्य परिचय हमारे सामने रखते हैं। तो वो परम पिता परमात्मा है, वो परम पिता सभी आत्माओं का पिता, लेकिन परम आत्मा है, हम सब आत्माओं से परम है, सुप्रीम। तो किन गुण और शक्तियों के वजह से परमात्मा परमात्मा है, सभी देवात्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन ये परमात्मा, तो कौन सी वो विशेषताएं हैं जिसके आधार से? तो पहली विशेषता है कि परमात्मा ऊंचते ऊंच है, सर्वोच्च है। इसलिए हम महिमा में गाते भी हैं कि ऊंचा उसका नाम, ऊंचा उसका काम, ऊंचा उसका धाम, याद करते हैं उस सर्वोच्च सर्वशक्तिवान को। दूसरा हम देखते हैं कि परमात्मा सर्वज्ञ है, अर्थात सब कुछ जानने वाला, ज्ञाता, सर्वज्ञाता। इसलिए हम देखते हैं कि सृष्टि में, क्योंकि हम कहते हैं वो रचयिता है, पिता भी है, रचयिता भी है, पालनहार भी है, तो रचयिता के पास रचना की संपूर्ण जानकारी होती है ना? आप माता पिता हैं, रचयिता है ना, तो बच्चों के उस जब आप स्कूल में एडमिट करते हैं, उनकी पढ़ाई की शिक्षा के लिए पेरेंट टीचर्स मीट होता है तो आप जाते हैं, उसके बीच भी अगर बच्चे के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में डिस्कस करना है टीचर को, तो किसको बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे, क्योंकि आप उनके बारे में सब कुछ जानते भी हैं और जिम्मेवार भी हैं। तो परमात्मा जो है वह रचयिता होने के कारण इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो हमें स्पिरिचुअल लॉज हैं, जो हमें गाइड करते हैं, ये सारे स्पिरिचुअल लॉज के बारे में बताना, स्वयं की हमारी पहचान देना, ये सारा ज्ञान उनके पास है। इसलिए हमने उनको ज्ञान का दाता कहा हुआ है, अर्थात सब कुछ जानने वाला। इसलिए जब हम मूंझते हैं कोई कार्य में, तो दैनिक भाषा में हम कहते हैं भगवान जाने, मुझे नहीं पता, भगवान जाने कह देते हैं ना। उस समय सोचते नहीं है, कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्यों जाने, वो क्यों जाने, क्योंकि वो माता पिता है, इसलिए वो जाने। अब वो क्या जानता है जो आकर हमको रोज समझा रहा है, समझ दे रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान की समझ वो हमें दे रहा है। तो हम देखते हैं कि परमात्मा आकर हमको अपना परिचय और सृष्टि के बारे में, ये सृष्टि चक्र का परिचय जो हम यहाँ राज्यों के कोर्स में सीखते हैं, कर्मों की गुह्य गति, ये आकर हमें ज्ञान देता है। तो इसलिए हमने कहा सर्वज्ञ। तीसरी बात, सर्वोपरि, सर्व प्रभावों से, सर्व बंधनों से परे, लिबरेटर, गाइड है। जब भी हम कोई कारोबार में मूंझते हैं तो ईश्वर को कहते हैं अब हमें इससे पार लगाओ। हमें लगता है ये बंधन है, हम कहते हैं ईश्वर हमें इससे मुक्त करो। तो वो सर्व कर्म बंधनों से, इस सृष्टि में जो भी प्रकार के कर्म बंधन है, प्रभाव है, इन्फ्लुएंसेस हैं, उन सब से परे है। इसलिए गीता में कहा गया है कि परमात्मा ने अपना परिचय दिया कि मैं अजन्मा हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। और फिर चौथी बात कि परमात्मा सर्व गुण और शक्तियों का स्रोत है। आत्मा को जो गुण शक्ति की आवश्यकता है, उसका स्रोत परमात्मा है, सोर्स है, इटर्नल सोर्स है। और पांचवी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो हम सर्व आत्माओं का पिता है, इसलिए सर्व मान्य है। सारे धर्मों में हमारे सभी धर्म पिताओं ने हमें उनके प्रति दिशा दी है, वो एक सर्वमान्य परिचय। तो चलिए हम धीरे धीरे एक एक बात को आगे लेते हैं और समझने का इसका प्रयास करते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि परमात्मा के बारे में, हम जब परमात्मा से ही जानते हैं तो वो बहुत सहज करके हमें समझाता है, क्योंकि वो पिता भी है और सुप्रीम टीचर भी है। तो जैसे आप अगर अपने बच्चों को कुछ बात समझाएंगे पढ़ाई में, जो आपकी मास्टरी है उसमें, तो कैसे समझाएंगे? बहुत सिंप्लीफाई करके, सिंपल करके, इजी करके, जो बच्चा समझ भी सके और आगे वो अपने एग्जाम में उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो परमात्मा भी आकर अपना परिचय हमें बहुत सहजता से देते हैं। ये पांच बातों का आधार जरूर है। अब सर्वोच्च पहली बात हम देखेंगे, तो ऊंचा उसका नाम, अर्थात जब भी हमने उसकी महिमा की तो उसकी उपमा हमने सागर से कंपेयर की है। हमने कहा कि वो शांति का सागर है, सुख का सागर है। कोई मनुष्य आत्मा में भी गुण है, हम उनकी भी महिमा करते हैं, कहते हैं ना ये बहुत शांत स्वभाव वाला है, ये बहुत सत्यवादी है, लेकिन ईश्वर को कहेंगे सत्यता का सागर। हम कहेंगे इनका मन बहुत शुद्ध है, ईश्वर को कहेंगे पवित्रता का सागर। सागर माना, सागर की क्या विशेषता है, क्यों सागर की उपमा की? समा लेता है, असीम है, बेहद है, अनंत है, इटर्नल है। जितना गुण वो शक्ति हम उनसे लेना चाहें उनमें वो भरपूर है, क्योंकि वो सागर के समान है। तो उनकी महिमा भी बहुत ऊंची है, लेकिन उस महिमा के पीछे उनका कर्तव्य श्रेष्ठ है। अब कौन सा कर्तव्य है ईश्वर का जो आपको बहुत प्रिय है, जिसके वजह से आप दैनिक जीवन में उनको याद करते हैं, दिल से उनसे संबंध महसूस करते हैं? आपको अपने जीवन में उनका कौन सा कर्तव्य सबसे प्रिय लगता है, जिस आधार से आप उनको बहुत प्यार से याद करते हैं? हर एक ने अनुभव किया हुआ है ईश्वर के साथ का, तो आपके लिए सबसे उनका उस समीप संबंध से प्रिय कर्तव्य कौन सा है, जिससे आपको वो अनुभूति हुई है ईश्वर के साथ की, सहयोग की? आत्मविश्वास भरने वाला है. और क्या करता है जी? दाता है, सदा दाता है. और क्या देता रहता है? प्रेम देता है, दुख हरता सुख करता है सदा ही जी, करुणा की देता रहे. तो हम देखते हैं हर पल वो हमें सुख देने वाला, दुख हरने वाला है. इसलिए कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई. सुख में करे तो दुख काहे कोई. अब दुख में हम उसको याद करते हैं तो परमात्मा हमें दुख से परे तो ले जाता है ज्ञान की समझ से, लेकिन सदा सुखदायी जीवन जीने की कला सिखाता है. तो इसलिए दुख हरता सुख करता है. पतित पावन, आत्मा का शुद्धिकरण करने वाला. जैसे हम रोज इस शरीर को क्लीन करते हैं, नहीं, अभी सुबह आपने स्नान किया, इस शरीर का शुद्धिकरण हम करते हैं. जो स्थान में हम बैठे हैं इसको भी क्लीन किया गया है. आपके घर में भी रोज आप क्लीनिंग करते हैं, नहीं, ऑफिस में जो आपकी पोस्टिंग जहां भी है आपका स्थान, वहां भी रोज क्लीनिंग होती है, हर जगह पर. तो हम देखते हैं कि हर स्थान पर हम क्लीनिंग करते हैं. लास्ट कब क्लीन किया हर स्थान को? सुबह का समय हो जाता है जब स्वच्छता क्लीनिंग करते हैं. आत्मा की क्लीनिंग, मन की क्लीनिंग कब लास्ट किया? तो इसका शुद्धिकरण परमात्मा हमें ज्ञान और योग से सिखाता है. तो पतित पावन, उनकी याद से आत्मा अंतर में जो उसकी कमजोरियों का प्रभाव है, किचड़ा है, वो साफ होता जाता है. इसलिए हमने कहा कि वह पतित पावन है. तो उनके कर्तव्य बहुत श्रेष्ठ है और ऊंचते ऊंचे हैं, इसलिए उनको ऊंचा कहा गया है. और जैसे हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं, उनका रहने का स्थान भी ऊंचते ऊंचे हैं. तो हम देखते हैं कि हर एक धर्म में परमात्मा के नाम और स्वरूप और परिचय में शायद थोड़ा अंतर है, थोड़ा विचारों में अंतर है, लेकिन स्थान में नहीं. तो हर धर्म में हम देखते हैं ईश्वर को कहाँ याद करते हैं? ऊपर की ओर. क्रिश्चियन धर्म में भी कहते हैं ओ गॉड फादर अबव. हमारे मुस्लिम भाई बहन भी क्या कैसे याद करते हैं? अल्लाह को ऊपर की तरफ. हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में भी कहा जाता ऊपर वाला जाने. साइंस की भी खोज किस तरफ है? ऊपर की तरफ. ग्लोब के अंदर क्या है? मिनरल्स हैं, धातु हैं, वो सब चीजें ही हैं, स्थूल मैटर. तो जो भी एग्जिस्टेंस है वो इस ग्लोब से, इस सृष्टि से पार. तो हम देखते हैं कि साइंस हमें बताता है कि ये थ्री वर्ल्ड्स हैं, और ये थ्री वर्ल्ड्स का आधार उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट के रूप में दिया है. तो एक ऐसी दुनिया है जहां हर एक चीज लाइट के स्पीड से नीचे चलती है, लाइट के गति से, रोशनी के गति से नीचे चलती है. और ये वो साकार दुनिया है, क्योंकि अगर लाइट के गति से नीचे चलती है तो आवाज भी है, साउंड भी है, मूवमेंट भी है, सब कुछ हम कर सकते हैं. तो ये साकार दुनिया का वर्णन है, जिसको हम स्थूल लोक भी कहते हैं, साकार दुनिया भी कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड भी कहते हैं, मिट्टी मैटर का वर्ल्ड. एक ऐसी दुनिया है जो हर एक चीज लाइट के स्पीड के समान चलती है, लाइट के गति के समान, जिसको हम सूक्ष्म लोक कहते हैं. अब लाइट के गति के समान तो वहां क्या नहीं होगा? कंपेयर अगर करें हम इस स्थूल लोक से उस सूक्ष्म लोक में, क्या नहीं होगा जी? साउंड नहीं होगा, क्योंकि साउंड का स्पीड क्या है? उससे कम है, इसलिए साउंड नहीं होगा. तो वहां मूवमेंट है, इसलिए उसको हम सूक्ष्म लोक कहते हैं, फरिश्तों की दुनिया, एंजेलिक वर्ल्ड. और एक तीसरा धाम है जिसको हम कहते हैं सुपर ल्यूमिनस वर्ल्ड, जहां हर एक चीज लाइट की स्पीड के बियॉन्ड चलती है. तो वहां साउंड नहीं है, मूवमेंट नहीं है, और क्या नहीं है? समय नहीं है. हर एक चीज लाइट के स्पीड के बियॉन्ड है. तो इसलिए वो वर्ल्ड जिसको हमने फिर परम धाम के रूप में, ब्रह्म महत्त्व के रूप में जाना है, वो शांति की दुनिया, जहां आत्मा इस देह से न्यारा होकर पहुंचती है. ये शरीर की दुनिया कौन सी है? तत्वों की दुनिया, ये फिजिकल वर्ल्ड। फिर सूक्ष्म लोक और ये है परलोक, जिसको हम परम धाम कहते हैं, शांति की दुनिया, जहां हम इस देह के कर्म बंधन से न्यारे हैं, क्योंकि देह तो किसकी बनी हुई है? मिट्टी की। तो वो परम धाम में आत्मा ओरिजिनल उसका घर है, उसका स्पिरिचुअल अबोड है। तो हम मेडिटेशन में मन से वहां पहुंचते हैं, मन बुद्धि से उस परम धाम में पहुंचकर परमात्म मिलन अनुभव करते हैं। अब साइंस क्या कहता है, अभी थर्मोडायनेमिक्स में साइंस क्या बताता है कि अगर हम जो भी अपने मस्तिष्क को, ब्रेन को, जो भी हम संकल्पों के द्वारा विजुअलाइजेशन देते हैं, चाहे उसको इमेजिन करते हैं, और जो रियलिटी है, फैक्ट, ये दोनों चीजों का अंतर मस्तिष्क नहीं अनुभव करता, वो समानता में उसको महसूस करता है। तो जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, अगर हम सिर्फ उसको विजुलाइज करते हैं तो भी हमें वही प्रकार का अनुभव होता है, ये साइंस हमें सिखा रहा है। तो इसलिए हम मन और बुद्धि को के द्वारा, हम उन सपने विचारों के द्वारा, जैसे हम विमान में बैठकर पहुंचते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान आप फ्लाई करते हैं तो बियॉन्ड द ग्लोब आप वो स्काइज में चले जाते हैं, ऐसे मन और बुद्धि के द्वारा हम उस परम धाम में संकल्पों के द्वारा पहुंचते हैं। अब हम देखते हैं कि परमात्मा को कहा कि वह सर्वोपरि है और सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, क्योंकि वह आकर हमें ज्ञान देता है, समझ देता है, जो समझ हम फिर अपने दैनिक जीवन में जब उपयोग करते हैं तो इसे हमें जीवन में समाधान स्वरूप बनते जाते हैं। जीवन वही है, आध्यात्मिकता द्वारा परमात्मा हमें ज्ञान से समाधान सिखाता जाता है, समझ देता है, और जिससे हम हमारा उस परिस्थिति के प्रति नजरिया, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, और हम हर परिस्थिति को अपने जीवन में पर्सनल लेवल पर समाधान स्वरूप बनते जाते हैं। अब तीसरा हम देखते हैं कि वो है ही सर्वोपरि, सर्वोपरि अर्थात सर्व बंधनों से परे। अब आत्मा के पास कुछ बंधन है इस साकार लोक में, इस फिजिकल वर्ल्ड में। कौन सा बंधन है? शरीर का है। तो ये शरीर का बंधन अर्थात आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, गर्भ में माता के प्रवेश किया, तब जन्म हुआ। जन्म होते ही क्या हो जाता है, क्या निश्चित है? मृत्यु। क्योंकि आत्मा का इस शरीर में प्रवेश होना जन्म, आत्मा का ये शरीर छोड़ना मृत्यु। तो जर्नी आत्मा की है जन्म से मृत्यु तक। तो हम देखते हैं ये कर्म बंधन हो गया आत्मा का इस शरीर से के साथ। जन्म लिया तो शरीर छोड़ना है, तो मृत्यु, क्योंकि तत्व है ना, तो इसकी लिमिटेशन है, इसकी एक आयु है तत्वों की वजह से। फिर हम देखते हैं कि जन्म लिया तो कर्म करेंगी आत्मा, शरीर के द्वारा कर्म करते हैं ना, तो ये कर्म करना माना कर्म और उसके साथ क्या जुड़ा है? फल। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो कर्म और फल ये भी एक साइकिल है, ये भी एक बंधन है। अब कर्म की क्वालिटी क्या है? जो हमने देखा आत्मा के गुणों के द्वारा आपने कर्म किया तो श्रेष्ठ कर्म, अगर अपनी कमजोरियों के वश कर्म किया तो नेगेटिव कर्म। तो जहां नेगेटिव कर्म है वहां दुख का अनुभव है, जहां श्रेष्ठ कर्म है वहां सुख का अनुभव है, तो सुख और दुख। तो जन्म मरण कर्म फल सुख दुख पाप पुण्य, ये साइकिल में आत्मा आती है, और परमपिता परमात्मा यह साइकिल से न्यारा है। क्यों क्यों इससे न्यारा है? जिसके लिए गाया कि अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। मनुष्य समान कर्म बंधन में नहीं आता, क्योंकि वो तो लिबरेटर है। तो जो स्वयं बंधन में है वो लिबरेट कर सकता है, स्वयं डूब रहा है वो बचा सकता है? नहीं। दूसरा साइंस भी हमें कहता है, फिजिक्स में लॉ ऑफ एंट्रोपी, जो नाम तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत उसकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, कि कोई भी सिस्टम जब शुरू होता है, आरंभ होता है, तो वो 100% एफिशिएंसी में होता है, लेकिन जैसे सिस्टम को आप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है, डिप्लीट होती जाती है। और जब ये एफिशिएंसी कम होते होते ऐसे पोजीशन पर पहुंचती है कि अब ये एफिशिएंसी बिल्कुल कम है, निल के तरफ जा रही है, बहुत समाप्त हो चुकी है, तब क्या होता है, उस सिस्टम को फिर से हमें रिवाइव करना है, फिर से हमें सशक्त करना है, रिजुविनेट करना है, तो क्या करना होगा, उस सिस्टम को एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ना होगा। ये लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता है। जैसे हमारा मोबाइल, नहीं, जैसे जैसे हम इसको चार्ज करके निकालते हैं तो क्या होता है, चार्जिंग से जैसे निकालना शुरू किया क्या होगा, यूज करना शुरू होगा, थोड़े समय के बाद ही हम देखते 99 आ गया तो उसको हम यूज करते हैं, माना डिप्लीट होगा। लेकिन जब वो ऐसा समय आता है कि वो बहुत डिप्लीट हो रहा है, 15% आ जाता है, तो वो एक रेड मार्क आ जाता है, बार बार हमें मैसेज आता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको चार्जर के द्वारा इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ते हैं। मोबाइल खुद को चार्ज कर सकता है? नहीं। तो हम देखते हैं जैसे आत्माएं अपने आध्यात्मिक शक्ति उनकी क्षीण होती जाती है, हमने कल आत्मा के अंदर देखा कौन से गुण है, ओरिजिनल उसके गुण जो शक्ति का स्वरूप ले लेती है कारोबार में, कर्म में, कौन से गुण है आत्मा के ओरिजिनल उसकी विशेषताएं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। तो ये गुण और शक्तियों की परसेंटेज जैसे कम होती जाती है, तो एक ऐसा समय आता है जो हम आज अनुभव कर रहे हैं समाज में कि ये शक्ति बहुत कम है, इसको दैनिक जीवन में अनुभव नहीं कर रहे। कोई एक स्थान पर जहां शांति का वायुमंडल बना हुआ है वहां अनुभव करते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य में अनुभव करते हैं, बट इंडिपेंडेंटली हर परिस्थिति में ये शांति की शक्ति को अनुभव नहीं कर पा रहे। तो वो शांति की शक्ति आज डिप्लीट हो गई है, पवित्रता की शक्ति डिप्लीट हो गई, स्नेह की शक्ति, हरेक के प्रति शुभ भावना नहीं रह पाती है, हरेक को क्षमा नहीं कर पाते हैं, कईयों को करते हैं, हरेक को नहीं कर पाते हैं। तो वो अनकंडीशनल लव, उसकी पावर कम, अब वो फिर से हमें रिचार्ज करना है, तो उसके लिए वो स्रोत चाहिए जो इस जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वो रोल परमात्मा प्ले करता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा सर्व कर्म बंधनों से जन्म मरण के चक्र से भी न्यारा है। और फिर चौथी बात, वो स्रोत है सागर के समान, हर गुण और शक्ति उसमें समाई हुई है, तो जितना हम लेना चाहें, दाता है, तो इसलिए हम वो अपने अंदर भर सकते हैं। तो शरीर के लिए जो आवश्यकता है वो हमें इस सृष्टि में प्राप्त है, अपने अपने कारोबार के द्वारा, अपने अपने जीवन शैली के द्वारा, जीवन आजीविका के द्वारा, हम जो साधन हमें चाहिए शरीर के लिए और अपने शरीर के हमारे जो संबंध हैं उनकी पालना के लिए वो हमें प्राप्त है। लेकिन आत्मा को जो चाहिए, अंतर की शांति चाहिए, तो एसी तो ऑन कर देंगे हम जब गर्मी है, लेकिन मन को अगर रिलैक्स करना है, मन को शांत करना है, तो हम देखते हैं एसी में भी बोर्डरूम्स में क्या होता है, जब मीटिंग होती है तो मन जो है वो क्रोध में, आवेश में, कहीं ना कहीं तपत है अंदर, तो वो शीतल नहीं हो पाता है स्थूल साधनों से, वहां हमें परमात्मा से वो शांति को अनुभव करना है। अंतर में जो प्रेम की अनुभूति की कमी है, सेल्फ लव, अपने प्रति एक्सेप्टेंस, औरों से भी जो स्नेह की शक्ति की अनुभूति हमें करनी है वो कमी है, तो इसलिए हम देखते हैं वो परमात्मा से अनुभव कर रहे हैं। तो वो हम देखते हैं आज हर एक आत्मा सीख कर रही है, संबंधों के द्वारा, साधनों के द्वारा, खुशी, अंतर की खुशी, तो कभी साधनों के द्वारा, कभी हम देखते हैं संबंधों में भी एक्नॉलेजमेंट के द्वारा आत्मा सीख कर रही है। तो परमात्मा स्रोत है आत्मा के सर्व गुण और शक्तियों के, जो सदा हम अनुभव कर सकते हैं। और पांचवा जो सबसे मुख्य है कि परमात्मा कौन है, वो सर्वमान्य है, सर्व आत्माओं का पिता है, हम सब यहाँ जो बैठे हम सब एक एक विशेष आत्मा है और उनका वो पिता है। तो वो पिता है तो सर्वमान्य है, तो कैसे है, सर्व धर्मों में हमने देखा कि परमात्मा को उस प्यार से याद किया गया है, और उस रूप से जब हम याद करते हैं उनको प्यार से, तो अगर हम एक एक धर्म का चक्कर भी लगाएं, हम देखते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट ने क्या कहा है, जीसस क्राइस्ट ने, गॉड इज वन, गॉड फादर को याद करो, आई एम, अपने बारे में क्या कहा, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, मैं मैसेंजर हूं। जब उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने कहा, ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू, हे ईश्वर माफ कर लो इनको, क्योंकि ये नहीं जानते इन्होंने क्या किया है। ईश्वर को कहा माफ करने के लिए, कहा मैं तो सिर्फ उनका बच्चा हूं, मैं सिर्फ उनका संदेश वाहक हूं। गुरु नानक जी ने भी क्या, किस रूप से याद किया परमात्मा को, सतगुरु, सत श्री अकाल, वो निराकार सतगुरु को याद करो, ऊपर की तरफ इशारा दिया। इसलिए आप देखिए वहां गुरुडम से भी निकाल बुद्धि को उन्होंने ज्ञान के ग्रंथ में समाया कि गुरु ग्रंथ साहिब, वही गुरु है, वही सतगुरु का ज्ञान जो है वो आपको गाइड करेगा जीवन में, आपको आगे उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। तो उन्होंने भी उस सतगुरु को याद किया जिसके लिए उन्होंने कहा कि वो निराकार निर्वैर है, सत श्री अकाल, निराकार जिसका शरीर रूपी आकार नहीं। तो शरीर के माता पिता अलग, हम सब जो यहाँ बैठे हैं हम सबके शरीर के माता पिता अलग, अगर सिबलिंग्स हैं भाई बहन है तो एक है, लेकिन आत्मा का माता पिता निराकार परमात्मा है और वो हम सबका एक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वहां भी उन्होंने उस सतगुरु को याद किया, उस निराकार निर्वैर जिसका किसी से वैर नहीं, क्योंकि हर एक उसका बच्चा है, चाहे वो कितना गलत कर्म भी कर रहा है लेकिन है तो बच्चा, इसलिए उसके कल्याण के लिए वो हर एक के प्रति निर्वैर है। फिर हम देखते हैं कि हमारे इस्लाम के द्वारा हमारे मुस्लिम भाई बहन भी किसको याद करते हैं, नूरे इलाही, अल्लाह को याद करते हैं। नूरे इलाही, नूर का अर्थ क्या है, लाइट, रोशनी, वहां भी निराकार स्वरूप के रूप में याद करते हैं, दैहिक स्वरूप नहीं है, निराकार स्वरूप के रूप में याद करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पारसी भाई बहन जो है वो किस रूप में याद करते हैं, अग्यारी, उनकी फायर टेम्पल है, वहां भी अग्नि का स्वरूप, लाइट का स्वरूप। जो हम देखते हैं ज्यूज हैं, यहूदी हैं, तो ज्यूज किस रूप में याद करते हैं, उनके धर्म गुरु मोसेस जो 10 कमांडमेंट्स लिखे, तो वहां भी हम देखते हैं उन्हें साक्षात्कार हुआ था जेहोवा के रूप में, इटर्नल लाइट, बर्निंग बुश लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में। तो हम देखते हैं हर एक धर्म में लाइट का स्वरूप, प्रकाश के स्वरूप में उस सुप्रीम फादर को याद किया गया है। लेकिन एक ऐसा धर्म है जिसमें साकार स्वरूप हैं बहुत सारे, अनेक स्वरूप, कौन सा धर्म है, सनातन धर्म। वहां हम देखते हैं हिंदू धर्म, तो वहां हम देखते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, और वो हर एक देवी देवता में दिव्यता का वास है, दैवी गुणों का वास है, लेकिन वहां भी एक निराकार स्वरूप है, कौन सा है, लिंग स्वरूप, शिवलिंग स्वरूप। तो वहां भी हम देखते हैं कि शिवलिंग के ज्योतिर्लिंगम स्वरूप भारत में है, 12 ज्योतिर्लिंगम जो हम बहुत श्रद्धा से वहां जाते भी हैं, लेकिन हर एक इस शिवलिंग का जो मंदिर है, विशेष ये ज्योतिर्लिंगम, उसके अलावा भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन नाम में हम क्या देखेंगे, नाम या तो नाथ है या ईश्वर है, बाबुलनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, रामेश्वरम, वापकटेश्वरम, तो ईश्वर अर्थात परमात्मा, नाथ अर्थात लॉर्ड। और हर मंदिर का जो नाम है वो कर्तव्य सहित है कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है, अमरनाथ, तो अमर आत्मा का ज्ञान देकर हमें मृत्यु के भय पर विजयी बनाने वाला, अमर बनाने वाला अमरनाथ। फिर हम देखते हैं सोमनाथ, तो सोम रस किसको कहते हैं, अमृत को कहते हैं, नेक्टर ऑफ लाइफ कहते हैं, ज्ञान अमृत है जो नया जीवन देता है, मृत्यु मनुष्य को जीवन दान देता है, जीव दान देता है, तो ये ज्ञान का सोम रस पिलाने वाला सोमनाथ, क्योंकि ज्ञान की समझ से हम अपने जीवन को संपूर्ण रूप से जीना शुरू करते हैं, खुशी से, आनंद से, एक आंतरिक विश्वास से, स्वमान से, शुभ भावनाओं से, भविष्य के प्रति उमंग उत्साह से जीना शुरू करते हैं। ये खुशी अगर नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, तो जीवन कैसा है? निरस है, जी नहीं रहे हैं, नहीं एक एंजॉय नहीं कर रहे हैं लाइफ को। तो उस रूप से ज्ञान का सोमरस पिलाने वाला सोमनाथ, बॉम्बे में जहां मैं बेस्ड हूं वहां बबुल नाथ है। तो बबुल का वृक्ष जो है कांटों का वृक्ष, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है क्योंकि वो दातून के रूप में भी यूज होता है बबूल। लेकिन हम देखते हैं कि वो कांटों का झाड़, तो कांटे समान मनुष्य की जो वृत्ति हो गई है आज, हर एक के अंदर में जो अवगुण है उसकी वजह से हम जब बोलते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो दूसरों को दुख देने के निमित्त बनते हैं, ऐसा है? जब भी थोड़ा गुस्सा हम करते हैं तो हमें तो जस्टिफिकेशन लगता है, नहीं ये जरूरी है, ऐसा करना जरूरी था, लेकिन सामने वाली आत्मा को तो दुख मिलता है, नहीं? तो हमारी कमजोरियों के वजह से जब हम दुख देना शुरू करते हैं तो उन नेगेटिव संस्कार को, नेगेटिव मनोवृत्तियों को परिवर्तन करने वाला, कांटों से हमें फूल बनाने वाला, सुखदायी बनाने वाला बबूलनाथ। तो परमात्मा का कर्तव्य ही इतना श्रेष्ठ है, इसलिए हम देखते हैं कि हर एक वो मंदिर उस कर्तव्य के अनुसार बनाए। पशुपतिनाथ, पशुओं का भी नाथ, पशु जैसी मनुष्य की वृत्ति को परिवर्तन करने वाला नाथ। तो उस रूप में हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में भी जो साकार स्वरूप है वो देवी देवताएं हैं, दैवी गुणधारी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं जिसमें संपूर्णता है, संपूर्ण दैवी गुणधारी। इसलिए गायन भी किया गया है गुरु नानक जी ने कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने, क्या मनुष्य से देवता की करत न लागी वार। तो नर को क्या लक्ष्य दिया, क्या बनना है? नारायण। अर्थात नारायण कौन, क्या स्वरूप है नर का? साधारण नर में जो संपूर्ण दैवी गुण आ जाते हैं तब वो नारायण बनता है। ऐसे भी कोई व्यक्ति बहुत गुणवान है या कुछ हमें मददगार बन जाता है, समय पर मदद करता है, तो हम क्या कहते हैं, ये तो देवता है हमारे जीवन में, ये जैसे देवता है, फरिश्ता है, कहते हैं उसमें कोई ऐसे विशेष गुण है। तो हम देखते हैं कि परमात्मा आकर हमें ऐसे गुणवान बनाता है। तो इसलिए उस निराकार स्वरूप से हर धर्म में हमने उनको बहुत प्यार से याद किया है। तो परमात्मा आकर वो परिचय हमें देते हैं कि उनका स्वरूप एक है, निराकार स्वरूप, रहने का स्थान ऊपर में है, उनका कर्तव्य क्या है, हम आत्माओं को फिर से सशक्त करना, हम आत्माओं को संपूर्ण पावन बनाना, आकर के हमें ज्ञान देना, और वो किसका पिता है, आत्मा का पिता है। तो स्वरूप कैसा, निराकार स्वरूप, बिंदी स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। हमने कल आत्मा का स्वरूप देखा, तो हम देखते हैं कि वो स्वरूप बिंदी के रूप में कंपेयर करते हैं। जैसे अगर आपको मैं, आपसे मैं बातचीत कर रही हूं, तो ये आवाज जो है वो एक प्रकंपन के रूप में आपके पास पहुंच रही है, नहीं? साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, आवाज की एनर्जी है, आपके पास पहुंच रही है ना, आप सुन रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं इस एनर्जी को, देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम उसको पिक्चर के फॉर्म में, यू नो, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में हम अगर ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं, वेव्स के रूप में, नहीं? तो एक्चुअली उस रूप से नहीं, बट उनका फॉर्म इस रूप से है। ऐसे ही आत्मा भी बिंदी स्वरूप है, डिवाइन स्पार्क ऑफ एनर्जी है, चाहे उसको स्टार कहते हैं, चाहे पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं, चाहे एक बिंदी कहते हैं, चाहे स्पेक कहते हैं, वो स्वरूप उसका बहुत दिव्य है। और परमात्मा का भी स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट है। स्वरूप में बच्चा और माता पिता समान होते हैं। हम मनुष्य हैं, हमारे माता पिता मनुष्य, आपकी संतान मनुष्य। प्राणियों में भी अगर हम देखें, हाथी है तो हाथी का माता पिता हाथी, घोड़ा तो नहीं हो सकता, स्वरूप में अंतर नहीं हो सकता, है ना? तो उसी रूप में हम देखते हैं कि हम आत्माएं, हमारा पिता परमात्मा निराकार स्वरूप। तो परमात्मा आकर अपना ये परिचय देते हैं कि मैं निराकार हूं और मैं परम पिता परमात्मा हूँ, मेरा नाम है शिव। अब शिव शब्द का संस्कृत में अर्थ है, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की माता कहा गई है क्योंकि हर एक भाषा में इसके शब्द हैं। तो संस्कृत में शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है बिंदी, एक अर्थ है बिंदी, दूसरा है बीज और तीसरा अर्थ है कल्याणकारी। तो परमात्मा का स्वरूप जो ईश्वर ने स्वयं बताया वो कौन सा है? बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, डिवाइन स्पार्क ऑफ एनर्जी। और इसलिए हम देखते हैं ये नाम में वो स्वरूप का भी याद समाई हुई है। दूसरा उनका हमारे साथ संबंध क्या है? वो बीज है, बीज अर्थात रचयिता। एक वृक्ष का बीज क्या हो जाता है? रचयिता हो जाता है, छोटा सा सूक्ष्म, लेकिन कितना उसकी रचना कितना विस्तार है। तो परमात्मा भी ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का वह चैतन्य बीज है, सीड है, अर्थात रचयिता है, हमारा मात पिता है। फिर तीसरा कल्याणकारी, हर आत्मा के प्रति उनकी भावनाएं क्या है? कल्याण की, इसलिए वह दुख हरता, सुख करता है, पतित पावन है, सहयोग दाता है, करुणा दाता, जो भी आपने कर्तव्य की महिमा की, तो कल्याणकारी है। तो एक शब्द में ये तीनों याद आ जाते हैं, समाये हुए हैं, इसलिए परमात्मा ने आकर अपना नाम शिव कहा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जब हम उनको याद करते हैं तो यहाँ कई भाई बहनों से, हम बहनों से भी आपने ये शब्द बार बार सुना होगा, बाबा। तो चाहे हम शिव बाबा कहते हैं या कई बार सिर्फ बाबा कहते हैं, जैसे आपका बहुत सीनियर पोजीशन है आपके, जो भी आप फोर्सेस में से आए हैं तो आपके फोर्स में आपका वो पोजीशन है, लेकिन जब घर आते हैं तो आपके बच्चे आपको क्या कहेंगे? पापा, डैड, पॉप्स, कितने अलग अलग नाम है, पा, अलग अलग रूप से, लेकिन वो नाम से समीपता महसूस होती। वो जानते हैं आपका बहुत सीनियर पोजीशन हो, चाहे वो हेड कमांडेंट हो, चाहे वो चीफ भी हो कोई भी आर्म फोर्सेस का, लेकिन घर में तो वो कौन है? पिता है। तो परमात्मा का भी स्वरूप हम जानते हैं, उनके कर्तव्य ऊंचते ऊंच है, तो उस रूप में महिमा के रूप में हम गायन करते हैं, दिल से सम्मान है, लेकिन हमारा कौन है? मेरा कौन है? कौन है? पिता है। इसलिए हम यहाँ बहुत प्यार से उनको बाबा कहते हैं, मीठा बाबा कहते हैं, प्यारा बाबा कहते हैं, मेरा बाबा कहते हैं, अपनापन होता है। अब बच्चे भले दो तीन हो लेकिन हर एक को लगता है मम्मी कौन, किसकी है? मेरी है। डैडी किसके हैं? मेरे हैं। वो अपनापन महसूस होता है ना, और माता पिता भी हर एक बच्चे को वो अपनापन महसूस कराते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, वो अनुभव कराते हैं। ऐसे परमात्मा पिता भी हमें बहुत प्यार देता है, हमें ऐसा अनुभव कराता है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ। अब हम पहले परमात्मा को याद से ज्यादा फरियाद करते थे, मांगते थे, हम कहीं ना कहीं उनसे मांगते रहते थे, इसलिए कहीं ना कहीं भिखारी थे, भिखारी थे ना, मांगते थे कि ईश्वर ये दे दो, ये हमें शक्ति दे दो, हम पर ये कृपा करो। अब परमात्मा कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँ, बालक सो मालिक हुआ, तो परमात्म अधिकारी बन गए। अब परमात्मा से हमारा जब संबंध जुड़ गया है तो हम उनके प्यार के, उनकी शक्तियों के, उनकी हर गुण और प्राप्ति के अधिकारी हैं। अंतर हो गया, एक है मांगना और एक है अधिकार महसूस होना। जैसे आपके बच्चे आपके लिए क्या महसूस करते हैं? मम्मी डैडी किसके हैं? मेरे हैं। और जो भी मम्मी डैडी का है वो किसका है? मेरा है। हमारा भी नहीं, मेरा है। इसलिए अगर छोटा बच्चा भी होता है, वो खेल रहा है कंपाउंड में, उसको पूछा जाए गाड़ी किसकी है, कहेगा मेरी है। वो ये नहीं कहेगा डैडी की है, कहेगा मेरी है। क्यों? वारिस है, बालक माना वारिस। तो अब परमात्मा से हमारा संबंध क्या हो गया? वो मेरा है, इसलिए उसके हर गुण और शक्ति को मुझे अपने अंदर भरना है, उस पर मेरा अधिकार है। तो अब मेडिटेशन में, राजयोग के अभ्यास में हम उनसे कुछ मांगेंगे नहीं, वो शांति का सागर, तो मैं उनका बच्चा कौन? मैं शांत स्वरूप हूँ, और उस शांति के सागर से वो शांति की शक्ति को अपने अंदर भर रहा हूँ, अपने अंदर समा रहा हूँ। तो वो समानता का अनुभव ईश्वर कराता है, ये सिर्फ ईश्वर ही करा सकता है। वही हमें अपने जैसा देखता है। वैसे भी कहा जाता है कि when two energies meet, flow of energy is from higher to lower, ऊंचे से नीचे ऊर्जा तक। कब तक वो फ्लो, कब तक है? टिल बोथ आर इक्वल। तो ईश्वर हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। कोई ऐसा बनाना चाहेगा? नहीं। माता पिता भी बच्चे को याद कराते हैं, तुम मेरे माता पिता नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम ऊंची आवाज से नहीं बोलो, तुम इस रूप से नहीं बोलो, याद रखो मैं माता पिता हूं, मैं डिसीशन मेकर हूं, ऐसा है ना। लेकिन परमात्मा क्या कहता है कि तुम मेरे जैसे हो, मेरे में जो गुण और शक्ति है तुम्हारे में भी है, तुम मेरे जैसे हो। तो रोज हम यहाँ जो परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट महावाक्य सुनते हैं, जो हम सब स्टूडेंट्स, हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं यहाँ, तो हम सब की एक स्पिरिचुअल स्टडी है। जो सोर्स है, जो भी आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, वर्कशॉप सुन रहे हैं, ये सब का वो सोर्स है। तो उसमें रोज परमात्मा हमें अपना और परिचय अनुभव कराते हैं और समीपता अनुभव कराते हैं। तो अब क्या होगा, जब ईश्वर को हम याद करेंगे तो वो समीप संबंध का अनुभव होगा, अपनेपन का अनुभव होगा। उनका स्वरूप भी क्लियर है, उनका रहने का स्थान भी क्लियर है, उनका रोल मेरे लाइफ में क्या है वो भी क्लियर है। ये नहीं कि हम याद करें लेकिन हमें पता नहीं वो क्या अनुभव कराएगा, नहीं। हम जब मेडिटेशन में बैठेंगे, हमें लक्ष्य है कि हमें ये अनुभव करना है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये समीपता बहुत सहज होती जाएगी, और ये संबंध इतना समीप, जितना हम किसी से बातचीत करते हैं वो संबंध कैसे होता है, समीप होता जाता है कनेक्ट करने से। अभी जैसे आप जिस दिन आए हैं तब से आपके कुछ फ्रेंड्स यहाँ बने हैं ना, दो तीन दिन में ही। अब जब जाने का दिन आएगा आप फील करेंगे अरे इनसे हम अलग हो रहे हैं, और फिर एक्सचेंज कर लेंगे नंबर्स, बातचीत करते रहेंगे, कनेक्ट करते रहेंगे, है ना। तो पहले आप बिल्कुल उनको जानते नहीं थे, अब दो दिन में क्या हो गया, शेयरिंग की आपने, बातचीत की, एक दूसरे को देखते रहे, साथ में क्लास में देखते रहे, ग्रीट करते रहे, कहीं ब्रेक में आपने कोई बात पूछा, शेयर किया, कहां से अनुभव एक्सचेंज किए। तो ऐसे हम रोज सुबह से रात तक परमात्मा से बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि अब तो समीप संबंध जुड़ गया ना। हर संबंध वो हमारा माता पिता तो है, लेकिन हमने भक्ति में भी गाया त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुत्वमेव सखा त्वमेव शिक्षक त्वमेव। तो हर संबंध की समीपता, माता पिता के रूप में क्या पालना मिलती है हमें उनसे, क्या मिलती है पालना माता पिता के रूप में? प्रेम मिलता है। एक माता के रूप में वो अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस, पिता के रूप में हर पल गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर फील कराता है। जैसे हम दैहिक माता पिता से वो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फील करते हैं, ये परम रक्षक जो सदा हमारे साथ है, जो हर पल हमें सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि माता पिता के साथ साथ हमारा मित्र भी है, खुदा दोस्त है। तो दोस्त के रूप में हम क्या संबंध महसूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उनके साथ जी? फ्रेंड के रूप में क्या कर सकते हैं, वो संबंध से हमें क्या मिल सकता है? स्नेह, और शेयर कर सकते हैं, दिल की हर बात उनके सामने रख सकते हैं ओपनली, नहीं? जैसे मित्र कैसे होता है, जैसे हम वैसे उनके सामने, और वो हमें क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इसलिए आप देखिए बच्चों को सबसे ज्यादा क्या अच्छे लगते हैं, फ्रेंड्स, नहीं? आप उनको कुछ कहेंगे तो वो सोचेंगे, लेकिन फ्रेंड ने कहा तो 100% करना है, वो बिलीफ है, नहीं? और टाइम भी किसके साथ ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि वो रिलेशनशिप में क्या है, वो रिलेशनशिप में क्या है, क्यों वो आकर्षण है, जानते हैं, पालना आप कर रहे हैं, जानते हैं उनको जो कुछ प्राप्ति है वो आपसे है, उनको कुछ चाहिए तो आपके पास ही आएंगे, जानते हैं सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आकर्षण फ्रेंड्स का है, क्यों? वो संबंध की समीपता क्यों है, ओपननेस है। वहां वो जैसे हैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, और सामने वाला व्यक्ति फ्रेंड जो है उसको एक्सेप्ट करता है। ऐसे परमात्मा हमारे बहुत अच्छे खुदा दोस्त हैं, हर दिल की बात आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो हमारा शिक्षक भी है। तो हर पल परमात्मा हमें सिखाता रहता है। आप उनके साथ बातचीत करेंगे, वो हर परिस्थिति जो डिफिकल्ट है उससे आपको गाइड करेगा कि क्या इससे आपको लर्न करना है। हर परिस्थिति या तो हमें आगे बढ़ाने आई है और या तो हमें कुछ सिखाने आई है। फिर हम देखते हैं वो हमारा जीवन साथी भी है, आत्मा का जीवन साथी। शरीर का जीवन साथी बहुत समीप है और वो भी बहुत हमें प्यार करता है, उनसे भी हमारा बहुत समीप संबंध है। लेकिन आत्मा का भी जीवन साथी जो हर पल 24 घंटे आपके साथ है। शरीर का हमारा जो जीवन साथी है वो हर पल साथ नहीं है, और कई बार हो सकता है कि थोड़ा विचारों में अंतर हो उनके साथ, लेकिन ये जीवन साथी सदा साथ है। इसलिए वो हमारे मन को फिर से उस प्यार से, उस शक्ति से, उस अपनेपन से भर देता है, जो हम फिर इस जीवन साथी के प्रति भी ओपन हो जाते हैं, उनको क्षमा कर सकते हैं, उस संबंध को फिर से हील कर सकते हैं। तो परमात्मा से हम जितना चाहें हर संबंध का प्यार अपने अंदर भरते हैं, ताकि फिर हमारे जो और संबंध है परिवार के, कारोबार के, उन संबंधों में हम क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, दाता। आपने कहा ना ईश्वर कौन है, दाता, गिवर। तो वो संबंध क्या हो जाएगा, जैसे हम हर संबंध में दाता बन जाएंगे, देने वाले बन जाएंगे, तो वो संबंध क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। दाता है उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ देना है। दाता को क्या मिलता है, ऑटोमेटिकली देने से क्या हो जाएगा, पहले वो संबंध हील हो जाता है। जो भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी थोड़ी मन मुटाव है, जो भी थोड़ा सा खींचातान है, वो सब क्या होगा, हील होता जाएगा। और फिर सामने वाले व्यक्ति से भी आपको बहुत प्यार और सम्मान मिलता जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप दे सकते हैं। लेकिन देना कब सहज होगा, जब हम भरपूर हैं, जब हमने अपने अंदर प्यार को, शक्तियों को, प्राप्ति को अनुभव किया है। आज क्यों हम ईश्वर से भी मांग रहे हैं और हर संबंध में भी मांग रहे हैं एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि वो भरा नहीं है। तो परमात्मा हमें ऑफर कर रहा है कि मैं हर गुण और शक्ति का सागर भी हूं, लेकिन हर संबंध से आपका हूं, आपके लिए उपस्थित हूं, 24/7 अवेलेबिलिटी है। और इसलिए आप मुझे याद करो, मुझसे शक्ति लो, प्यार से अपने आप को भरपूर करो, अपनी क्लेंजिंग भी करो और अपने हर संबंध को हील करो, अपने हर संबंध को सुखदायी बना दो। और उसके साथ साथ फिर हर कारोबार को सहज कर दो। कारोबार तो हम कर ही रहे हैं, बहुत सक्षम रूप से आप सेवाएं कर रहे हैं, देश को सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन वो कार्य और सहज हो जाए, उसमें और आपको सहजता भी महसूस हो, एकाग्रता भी हो, आपकी उन्नति भी हो, तो वो सहजता ये शक्ति से प्राप्त होती जाती है। जो आत्म कल्याण, जो अभी तक हमने थोड़ा समय उसको कम दिया था, आत्म उन्नति, आत्म कल्याण, आत्मा की प्रगति, जो हायर पर्पस है हमारे जीवन का, क्योंकि ये कारोबार भी कुछ समय के बाद, एक एज है ना रिटायरमेंट का, समय के बाद फिर ये पूरा हो जाता है। कई बार बहुत बड़ी आयु नहीं, उसके पहले ही आप रिटायर हो जाते हैं, या आर्मी से या जो भी आर्म फोर्सेस से। तो हम देखते हैं कि वहां फिर वो परिस्थितियों को डील करने के लिए आत्मा के अंदर बहुत शक्ति चाहिए। तो इसलिए परमात्मा से हम वो जो चाहें अपने अंदर भरपूर कर सकते हैं, उनके साथ का अनुभव हर पल कर सकते हैं। अब वो सर्वशक्तिवान अगर हर पल साथ है तो क्या होगा, अभी के आपकी जीवन की जो चैलेंजेस हैं आप देख सकते हैं, एक क्षण के लिए मन की आंखों के द्वारा देखें, जो डेली लेवल पर छोटी बड़ी बातें आती है, अब वही बातें परमात्मा सर्वशक्तिवान जब साथी बन जाएगा, उसको आप साथ अनुभव करेंगे, तो वही बातें क्या होगी, इजी लगेंगे। वो छोटा बच्चा आप देखते हैं ना, कई बार आप उसको ट्रैफिक में, आप ऐसे ही उसको रास्ते पर चलना के लिए कह दो, ट्रैफिक के बीच में उसको रख दो छोटे बच्चे को, तो क्या होगा, नहीं घबरा जाएगा ना, और वो कोशिश करेगा क्रॉस करने की, लेकिन क्या होगा, उसके अंदर बहुत डर होगा, घबरा जाएगा, यहां से व्हीकल देख रहा है, वहां से व्हीकल देख रहा है, तो घबरा जाता है। और उस बच्चे का हाथ जब उसके पिता के हाथ में है या माता के हाथ में है, तब वही बच्चा है, वही ट्रैफिक है, वही रास्ते के बीच में है, लेकिन निश्चिंत खेल रहा है। पिता का हाथ है, माता का हाथ है, तो वो आराम से खेल रहा है, निश्चिंत, वही जीवन। लेकिन परमात्मा के साथ के अनुभव से मन बुद्धि का हाथ ईश्वर के साथ है, तो वो साथ के अनुभव से साक्षी होकर हम वो परिस्थिति को देखकर उसका समाधान समझकर आगे बढ़ सकते। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए उसका अनुभव करते हैं, कुछ समय के लिए मन और बुद्धि को बाह्य जगत से समेट लेते हैं, एक कछुए के समान मन को अपने कारोबार से, दैनिक जीवन की जिम्मेवारियों से, संबंधों से कुछ समय के लिए छुट्टी ले लेते हैं, मन को अंतर की जगत की ओर दिशा देते हैं, मन की आंखों से अपने उस आत्मिक स्वरूप को देख रहे हैं। ब्रुकुटी की कुटिया में विराजमान मैं आत्मा रूपी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, मस्तक के मध्य में इस सुंदर सितारे को देखें, ये शांति का सितारा जिसे शांति के श्वेत प्रकंपन चारों तरफ फैल रहे हैं। मन की आंखों से ये सुंदर दृश्य देखें, मस्तक के मध्य में चमकता हुआ इस डिवाइन लाइट जिससे शांति की लाइट, शांति का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। ये शांति का प्रकाश मस्तक से चेहरे में और धीरे धीरे सारे शरीर में ये शांति की लाइट फैल रही है। धीरे धीरे शरीर भी बहुत हल्का और स्थिर हो जाता है। महसूस करें कि शरीर भी परमात्मा की अमानत है। अंतर से ईश्वर को धन्यवाद किया, आपने हमें स्वस्थ शरीर दिया। इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा इससे अलग हूं, इससे न्यारी हूं, इस आत्मिक स्वरूप को महसूस करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं। अपने अंतर की इस शुद्धता को, पवित्रता को महसूस करें। अंतर की शांति को अनुभव करते हुए अब कुछ समय के लिए इस देह की दुनिया से न्यारा हो जाएं, इस कारोबार की दुनिया से, आवास की दुनिया से कुछ समय के लिए मन और बुद्धि के विमान में बैठकर इससे पार चले जाएं। जैसे हमारा अनुभव है कि विमान में बैठकर हम इस धरनी से पार चले जाते हैं ऊपर की ओर, ऐसे ही मैं आत्मा मन की आंखों से देखें कि सुंदर सितारा उड़ चला इस सृष्टि से पार। सूर्य चांद से, अंतरिक्ष से भी पार, उस प्रकाश की दुनिया में पहुंचते हैं। मन की आंखों से देखें सोनेरी लाल प्रकाश का ये महातत्व, शांति की दुनिया जहां चारों तरफ शुद्धता है, पवित्रता है और गहरी शांति है। यहां अपने आप को देखें कि मैं सुंदर सितारा शांति की आभा में, शांति की प्रभा मंडल में स्थित हूं। अपने आप को देखें, इस शरीर से बिल्कुल न्यारा हूं, निश्चिंत, देह के बंधनों से बिल्कुल न्यारा, चिंताओं से मुक्त, निश्चिंत। और मेरे समान आसपास अनेक सुंदर सितारे चमक रहे हैं। ये सितारों की महफिल कितनी दिव्य है, और इन सितारों के बीच एक दिव्य सितारा जैसे मुझे अपने पास बुला रहा है। ये सितारा परमपिता परमात्मा है। उस प्यार के सागर का चुंबकीय आकर्षण मुझे अपने समीप ला रहा है। मन की आंखों से उस परमात्मा पिता के दिव्य स्वरूप को देखें। वो परम ज्योति स्वरूप, सुप्रीम लाइट, मुझे आत्मा के समान एक सुंदर दिव्य सितारा जो बिंदु होते हुए भी हर गुण और शक्ति का सिंधु है, सागर है। परमात्मा पिता प्यार का सागर, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। मन की आंखों से देखें परमात्मा की असीम पवित्रता, उनकी बेहद की शांति प्रकाश के रूप में मुझ आत्मा के अंदर समा रही है। इस सुंदर दृश्य को देखें कि वो सुप्रीम लाइट है, बिंदु स्वरूप जो सागर के समान शांति की लहरें उनसे उमड़ उमड़ कर मेरे पास आ रही है। मेरा मन, मेरा हृदय परमात्मा की असीम शांति से भरपूर है। अंतर में जो चिंताएं हैं, जो बोझ है, कुछ दुख है, अशांति है, वो सब कुछ मैं ईश्वर को सौंप देता हूं और अपने मन को, हृदय को उनके असीम प्यार से, उनकी पवित्रता से भरपूर कर रहा हूं। परमात्मा का शुद्ध प्यार कितना निर्मल है, दिव्य है, मेरे मन को सुकून दे रहा है। महसूस करें कि आप परमात्मा के बहुत समीप हैं, परमात्मा के बहुत प्यारे मीठे बच्चे हैं। परमात्मा पिता बहुत दिल से आपको कह रहा है, बहुत प्यार से आपको कह रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे समान हो। परमात्मा पिता मुझे अपनी सर्व शक्तियों की लाइट से, माइट से भरपूर कर रहा है। मन की आंखों से देखें कि उस सुप्रीम लाइट से शक्तियों की किरणें लेजर बीम के रूप में आपके अंदर समा रही है। परमात्मा की ये दिव्य शक्तियां आपके अंतर की कमजोरियों को समाप्त कर रही है। मन की आंखों से देखें कि परमात्मा की ब्लेसिंग्स, परमात्मा का प्यार, परमात्मा की शक्तियां एक सर्कल ऑफ लाइट बनकर आपके चारों तरफ है, एक सुरक्षा कवच के रूप में आपके साथ है। परमात्मा की स्नेह की छत्र छाया में आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, भरपूर हैं, संतुष्ट हैं, अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हुए परमात्मा के प्यार और शक्तियों से, उनकी असीम शांति से अपने आप को तृप्त महसूस करते हुए हम पुनः अपने आप को मन बुद्धि के द्वारा फिर से इस स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं। अपने आप को फिर से यहां इस स्थान पर देख रहे हैं। अगर आंखें बंद है तो उनको खोल देते हैं। अंतर मन में परमात्मा की उस असीम शक्तियों को और प्यार को महसूस कर रहे हैं। ओम शांति शांति।